بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتا متروں، آج آپ سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 65، 66 اور 67 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری صدیق منشاوی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولا ادخلناهم جنات النعيم۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ يا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتہن کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور یدی آسمانی کتاب والے ایمان لے آتے اور ایشور سے ڈرتے تو ہم ان کے پاپوں کو کشما کر دیتے اور انہیں انکمپاؤں کے باغوں میں پروشت کر دیتے، اور یدی وے تورات انجیل اور جو کچھ ان کے پالنہار کی اور سے ان پر اتارا گیا تھا سب کو قائم کرتے ارتھات ان پر کارے بدھ رہتے تو نسندیہ وے اپنے اوپر اور پیروں کے نیچے سے ایشوریہ وبھوتیاں پراپت کرتے، उनमें से एक गुट मध्यमार्गी है, परंतु अधिकांश लोग बुरे कर्म करते हैं। हे पैगंबर, आपके पालनहार की ओर से जो आदेश आप पर उतारा गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, और यदि आपने ऐसा न किया तो मानो आपने उसके संदेश को पहुंचाया ही नहीं। और जान लीजिए कि ईश्वर आपको लोगों से सुरक्षित रखेगा, निसंदेह ईश्वर काफिरों का मार्गदर्शन नहीं करता।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आज बुधवार है, अक्टूबर की 12, रबीउल अव्वल की 15 और मेहर माह की 20 तारीख। कार्यक्रम में आप विगत की ही भांति पहले विश्व समाचार सुनेंगे, जिसके बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत एकता सप्ताह के संबंध में विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। तो दोस्तों, ये थी रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। वरिष्ठ नेता ने कड़े प्रतिरोध को शत्रु से मुकाबले का मार्ग बताया है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने कड़ी चेतावनी दी है। रूस का कहना है कि यूक्रेन संकट के समाधान में अमेरिका गंभीर नहीं है। शेख जकजकी कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के एजेंट के रूप में सऊदी अरब काम कर रहा है। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने हालिया उपद्रव को शत्रु की ऐसी चाल बताया है जो ईरानी राष्ट्र की महान प्रगति के मुकाबले में बहुत ही बचकाना और हताशा भरी है। वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रतिरोध ही शत्रुता से मुकाबले का एकमात्र मार्ग है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनई ने बुधवार को वरिष्ठ नेता के चयन करने वाली काउंसिल के प्रमुख और उनके सदस्यों से भेंट वार्ता की। इस भेंट में उन्होंने कहा कि हालिया घटनाओं में सबके लिए, यहां तक कि निष्पक्ष विदेशी समीक्षकों के लिए भी, इसमें शत्रुओं का हस्तक्षेप पूरी तरह से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा आंतरिक भावनाओं से अस्तित्व में आने वाला मुद्दा नहीं है, बल्कि लोगों को प्रभावित करने, उनको उकसाने, यहाँ तक कि आग लगाने वाली सामग्री के प्रशिक्षण जैसे कामों से अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि ये क्या है। वरिष्ठ नेता ने हालिया घटनाओं में शत्रु की प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण बिंदु बताते हुए कहा कि ईरानी राष्ट्र ने बहुत ही कम समय के भीतर महान कदम उठाए जो विश्व वर्चस्ववादी नीतियों के मुकाबले में 180 डिग्री विपरीत थे। ऐसे में वे प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हुए। इसके लिए उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से पैसे खर्च करके अमरीका और यूरोप सहित अन्य क्षेत्रों के कुछ नेताओं को मैदान में उतारा। वरिष्ठ नेता ने कहा कि ईरानी राष्ट्र के महान आंदोलन ने यह दर्शा दिया है कि वो धार्मिक मूल्यों के प्रति कटिबद्ध है। देश पूरी शक्ति एवं क्षमता के साथ आगे की ओर बढ़ता रहेगा। آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے 40 کی ریلی میں لاکھوں یوواؤں کی اپستھتی اور ان کے ویوہار کو دھارمک آستھا کا گورو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ واسطو میں پہل تو ایرانی راشٹر کے ہاتھوں ہوئی تھی، اس لیے شترو اپدرو کے روپ میں پرتکریا کے لیے وش ہوا، جو بہت ہی بچکانی اور مورکھتا پورن حرکت تھی۔ راشٹرپتی نے کہا ہے کہ فلسطین کی مکتی کا مارگ بھی پرتیرودھ ہے۔ راشٹرپتی رئیسی نے بدھوار کو تہران میں 36ویں انترراشٹریہ ایکتا سمیلن کے ادگھاٹن سماروہ میں بھاگ لیا۔ انہوں نے بیت المقدس کو اسلامی جگت کا سب سے مہتوپورن مدعا بتایا۔ راشٹرپتی رئیسی نے کہا کہ کیول پرتیرودھ کے مادھیم سے ہی فلسطین سنکٹ کا سمادھان سمبھو ہے۔ ایران کے راشٹرپتی نے کچھ اسلامی دیشوں دوارا اویدھ زائونی شاسن کے ساتھ سمبندھ سامانیہ بنانے کی نندا کرتے ہوئے کہا کہ اس پرکار کا سمپرک راشٹروں کے بیچ سمپرک سے بالکل ہی الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اویدھ زائونی شاسن کے ساتھ سمبندھوں کو کھیتریہ راشٹر کسی بھی استھتی میں سویکار نہیں کریں گے۔ ایران کے راشٹرپتی کا کہنا تھا کہ سورگیہ امام خمینی نے جو دھوج لہرایا تھا وہ واسطو میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے بیچ ایکتا کا دھوج تھا۔ ایران کے ودیش منتری نے فرانس کے ودیش منتری کے ساتھ ہوئی بات چیت میں یورپی دیشوں دوارا ایران کے آنتک معاملوں میں کیے جانے والے ہستکشیپ پر ناراضگی جتائی ہے۔ امیر عبداللہیہ نے فرانس کی ودیش منتری کیتھرین کولونا کے ساتھ ہوئی ٹیلی فون وارتا میں کہا کہ اگر یورپی سنگھ نے دوہرا رویہ اپنانے کی کوشش کی اور ناسمجھی بھرا قدم اٹھایا تو اسے اس کا خامیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یدی یورپی سنگھ پرتبندھاتمک کاروائی کرتا ہے تو تہران کسی بھی استھتی میں چپ بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ بھی اس پر جواب دے گا۔ ودیش منتری نے بتایا کہ اس بات چیت میں ہم اس بات پر سہمت ہوئے ہیں کہ دوپکشی سمبندھوں میں آپسی سمان اور ہتوں کا پورا دھیان رکھا جانا چاہیے۔ الیکھنیہ ہے کہ مہسا امینی کی موت کو بہانہ بنا کر حالیہ دنوں میں ایران میں ہوئے دنگوں کو لے کر پرمانو وارتا میں شامل تین یورپی دیش برٹن، فرانس اور جرمنی بھی دنگائیوں کا سمرتھن کرنے والی ٹولی میں شامل ہو گئے ہیں، جس کا نیتت امریکہ دوارا کیا جا رہا ہے۔ ان دیشوں نے نہ کیول ایران کے آنتک معاملوں میں ہستکشیپ کرنے کا پریاس کیا بلکہ تہران پر پرتیبندھ لگانے کی بھی بات کہی۔ ایران کے دکشن پوروی کرمان میں موساد کے ایک جاسوس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کرمان کی نیائے پالیکا کے پرمکھ ابراہیم حمیدی نے کہا کہ IRGC نے ایک ویکتی کو گرفتار کیا ہے جو اویدھ زائونی شاسن کی گپتچر ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والا ویکتی دیش میں دنگے بھڑکانے اور قانون ویوستھا کو بادھت کرنے کی یوجنا بنا رہا تھا۔ کرمان پرانت کے مکھیہ نیایادھیش نے بتایا کہ پکڑا گیا جاسوس اپنی ناپاک یوجنا کو انجام دینے کے لیے ایرانی خفیہ ایجنسی سے سمبندھ بنانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ گرفتار ویکتی نے ایک ویوسائی کی آڑ میں کئی پڑوسی دیشوں کی یاترائیں بھی کی۔ انٹرنیٹ کے مادھیم سے اس نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی سے سمپرک بھی استھاپت کیا۔ یہ جاسوس ایران کے باہر اویدھ زائونی شاسن کی خفیہ ایجنسی کے سدسیوں کے ساتھ ملاقاتوں کی یوجنا بنا رہا تھا، تبھی اس کو دیش سے نکلنے سے پہلے ہی IRGC نے گرفتار کر لیا۔ روس کا ماننا ہے کہ یوکرین سنکٹ کے سمادھان میں امریکہ نکاراتمک بھومیکا نبھا رہا ہے۔ روس کے ودیش منتالے کے پروکتا نے بتایا ہے کہ امریکہ ایک اور تو یوکرین کو یدھ کے لیے بھڑکا رہا ہے، جبکہ دوسری اور اسی یدھ کے کوٹنیتک سمادھان کے پریاس بھی کر رہا ہے۔ یوکرین یدھ اب 8ویں مہینے میں پرویشت ہو گیا ہے۔ پشچمی دیش امریکہ کے نیتتو میں روس کے ورد پرتیبندھ لگاتے ہوئے یوکرین کو لگاتار ہتھیار بھیج رہے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اسی بات سے یوکرین یدھ لمبا کھنچتا جا رہا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ وارتا کا ہم ورود نہیں کرتے ہیں، کنتو کیف کی اور سے اس میں ولمب मामले को अधिक जटिल बना रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने मंगलवार को अपने एक संदेश में स्पष्ट रूप में कहा कि मॉस्को यूक्रेन संकट के कूटनीतिक समाधान का विरोधी नहीं है। ज़ाखारोवा के संदेश में कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन को उकसाकर संकट के कूटनीतिक समाधान को जटिल बनाता जा रहा है। उन्होंने अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन के लिए जो जिम्मेदारी स्पष्ट कर दी है वो उस पर अमल करेगा। नाइजीरिया के इस्लामी आंदोलन के प्रमुख ने कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका और ब्रिटेन का एजेंट बनकर नाइजीरिया के शिया मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है। आयतुल्ला शेख इब्राहिम ज़कज़की ने अल आलम टीवी नेटवर्क के साथ एक साक्षात्कार में ये कहा है कि दुनिया भर के देशों विशेषकर मुसलमानों ने ईरान की इस्लामी क्रांति से बहुत कुछ सीखा है। वे इस महान क्रांति को अपना रोल मॉडल मानते हैं। शेख ज़कज़की ने इस इंटरव्यू में नाइजीरिया में जारी शिया मुसलमानों के आंदोलन में सऊदी अरब की भूमिका और विशेष रूप से शिया मुसलमानों के खिलाफ सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की षड्यंत्रकारी योजनाओं का विरोध किया और विश्व भर के उत्पीड़ितों का ईरान द्वारा किए जाने वाले समर्थन के संबंध में खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान की सरकार और इस देश की जनता के बीच एक मजबूत रिश्ता है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व इस बात को पसंद नहीं करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश का माहौल हेट स्पीच के कारण खराब हो रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भड़काऊ बयानबाजी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। यह टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की है जिसमें आरोप लगाया गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बहुसंख्यक हिंदू वोट जीतने, सभी पदों पर सत्ता हथियाने, नरसंहार करने और भारत को 2024 के चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग इधर कुछ वर्षों से लगातार भड़काऊ और जहरीली बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने हरप्रीत मन सुखानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब ये कहने में सही हो सकता है कि नफरत भरे भाषणों के कारण पूरा माहौल खराब हो रहा है और उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। टीएमसी का कहना है कि सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई का अध्यक्ष पद छोड़ा नहीं है बल्कि उनसे ये पद छीना गया है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सौरभ गांगुली को अपमानित किया है क्योंकि वो उन्हें पार्टी में शामिल करने में विफल रही। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि भाजपा ने पिछले साल के विधानसभा चुनावों से पहले लोगों के बीच ये संदेश फैलाने की कोशिश की थी कि राज्य के बेहद लोकप्रिय व्यक्ति गांगुली इस पार्टी में शामिल होंगे। टीएमसी ने यह भी दावा किया कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है। टीएमसी के अनुसार जब गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई के सचिव पद पर बने रह सकते हैं तो फिर गांगुली क्यों नहीं बने रह सकते। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस पर एकता सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। जायजा ले रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
श्रोताओं, आप सबको ज्ञात है कि सुन्नी मुसलमानों के अनुसार 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर इस्लाम का जन्म हुआ था, जबकि शिया मुसलमानों का मानना है कि 17 रबीउल अव्वल को पैगंबर इस्लाम का जन्म हुआ था। 12 से 17 रबीउल अव्वल के बीच 6 दिन हैं और इन दिनों को ईरान की इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने एकता सप्ताह का नाम दिया था। इन दिनों में इस्लामी संप्रदायों को एक दूसरे से निकट करने के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें से एक तेहरान में इस्लामी एकता के संबंध में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। इस्लामी एकता की 36वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आज तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति के भाषण के साथ आरंभ हो गई। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का संदेश यह है कि हम चाहते हैं कि समकालीन मुसलमान का जीवन धर्म के अनुसार हो। इस्लामी जगत के शहीदों ने जागरूकता उत्पन्न कर दी है। कुछ लोग ये सोचते थे कि इस्लाम एक व्यक्तिगत चीज है, परंतु इस्लामी जगत के शहीदों ने लोगों को बेदार कर दिया और समस्त मुसलमान मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं और जिंदगी के समस्त मामलों का आधार इस्लाम रहे। दुश्मन इसी चीज से डरता है। इस्लामी एकता की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अवसर पर दर्जनों वक्ता और भाषणकर्ता एकता के संबंध में तकरीर करते और अपने सुझाव व प्रस्ताव पेश करते हैं। इस समय इस्लामी जगत को नाना प्रकार की समस्याओं का सामना है और उनकी बहुत सी समस्याओं का समाधान एकता में निहित है। बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि अगर मुसलमानों के मध्य एकता स्थापित हो जाए तो न केवल बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बल्कि बहुत सी समस्याएं व कठिनाइयां अस्तित्व में ही नहीं आएंगी। दूसरी तरफ इस्लामी जगत के दुश्मन विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लामी जगत व इस्लामी देशों में जितना अधिक मतभेद रहेगा उतना ही आसानी से इन देशों में अपने हितों को साधा जा सकता है। इसलिए इस्लामी जगत के दुश्मन विशेषकर पश्चिमी देशों और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों की एक मूल शैतानी नीति इस्लामी जगत के मध्य फूट डालना है, क्योंकि फूट वो चीज है जिससे वे आसानी से अपने अवैध हितों को साध सकते हैं। इसलिए फूट डालने में वे किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं ले रहे हैं। जब इस्लामी जगत के बुद्धिजीवियों, विद्वानों और धर्म गुरुओं आदि को इस बात का ज्ञान हो चुका है कि इस्लामी जगत के दुश्मन उनके मध्य फूट डालने में लगे हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और उन्हें चाहिए कि इस्लामी एकता की दिशा में यथासंभव प्रयास करें। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामी जगत या दूसरे शब्दों में इस्लामी संप्रदायों को एक दूसरे के निकट लाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके जवाब में कुछ विशेषज्ञों का मानना व कहना है कि इस्लामी संप्रदायों के मध्य जो समान बिंदु हैं उन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर समस्त मुसलमानों का कुरान एक है, क़िबला एक है, मुसलमानों के पैगम्बर एक हैं, इसी तरह दूसरी बहुत सारी चीजें। परंतु इस्लामी संप्रदायों के कुछ धर्मगुरु और आम लोग भी समान बिंदुओं पर ध्यान देने के बजाय मतभेद के बिंदुओं पर ध्यान देते हैं और उनके इस प्रकार के कार्य का नतीजा ये हुआ है कि इस्लामी संप्रदायों के बहुत से लोगों में एक दूसरे के बारे में गलत फहमियाँ भर गई हैं और यही गलत फहमियाँ एक दूसरे की दूरी का कारण बनी हैं। बहरहाल, मुसलमानों को उन बातों व कार्यों से यथासंभव परहेज करना चाहिए जो आपस में दूरी का कारण बनते हैं और उन समान बिंदुओं पर ध्यान व बल देना चाहिए जो एक दूसरे से निकटता का कारण बनते हैं। और इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में समस्त मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
अफगानिस्तान में जारी हिंसा और अशांति पर पेश है एक रिपोर्ट रविश जैदी की जबानी।
अफगानिस्तान में हाल के महीनों में इस देश के लोगों को असंतोष और गृह युद्ध की ओर ले जाने के लिए एक नई साजिश शुरू हुई है। इस षड्यंत्रकारी योजना के निशाने पर विभिन्न अफगान वर्ग और जातियां हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कभी हजारा और शिया समुदाय का खून बहाया जाता है, जैसे हाल ही में पश्चिमी काबुल के एक शिक्षा केंद्र में हुआ आत्मघाती आतंकी हमला था। वहीं दूसरे दिन सुन्नी मुसलमानों का खून बहा दिया जाता है। इन साजिशकर्ताओं पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मस्जिद हो या स्कूल या फिर कोई अस्पताल। इसी तरह इन षड्यंत्रकारियों को किसी वर्ग या जाति से भी कोई मतलब नहीं है। अफगानिस्तान में मौजूद कबीलों के वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि दुश्मनों की इस साजिश से मुकाबले का एक ही तरीका है और वो है पवित्र कुरान और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों पर अमल करना। अफगान शिया उलमा परिषद के प्रमुख आयतुल्ला सालेही मुदर्रिस का कहना है कि हम सबको पवित्र कुरान और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए और उन्हीं के आदेशों का पालन करना चाहिए। इस्लाम ने जितना बल एकता पर दिया है, उसकी तुलना में किसी भी कर्तव्यों पर इतना जोर नहीं दिया है। एक और अफगानिस्तान में जहां हर दिन धमाकों की आवाजें आ रही हैं, वहीं इन दिनों पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुभ जन्म दिवस के मौके पर हर तरफ से मुसलमानों के बीच एकता और एकता सप्ताह के मौके पर भाईचारे को लेकर भी आवाजें बुलंद हो रही है। अफगान शिया उलमा परिषद के सांस्कृतिक आयोग के प्रमुख श्री रिजवानी बामियानी कहते हैं कि इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह द्वारा कही गई बातों के अनुसार हमें मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करने की साजिश के केंद्रों को पहचानना चाहिए। हम जानते हैं कि हालिया कुछ वर्षों में इस्लाम दुश्मन शक्तियां, विशेषकर अमरीका और इसराइल ने मुसलमानों के बीच कलह पैदा करने के लिए थिंक टैंक बनाया हुआ है। आजकल अफगानिस्तान में जो देखा जा सकता है वो ये है कि दशकों से इस देश में जारी युद्ध और रक्तपात के बाद आज अफगानिस्तान के लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस देश की जनता ही आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करके अपने देश को इस दलदल से बाहर निकाल कर एक समृद्ध देश बना सकती है।
वर्मा भैया आश्कारस।
एक सुन्नी धर्म गुरु का कहना है कि हमारे लिए इस्लाम का साफ संदेश है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। अफगानिस्तान का हर वो व्यक्ति जो अपने देश में शांति व स्थिरता चाहता है, उसका मानना है कि ये देश सभी वर्ग और जाति के लोगों का है, लेकिन इस राष्ट्र के दुश्मन इस देश को अशांत बनाए रखना चाहते हैं। हम सबको एकता के साथ देश के दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। काबुल से IRIB के लिए बहनाम यजदानी की रिपोर्ट।
और अब रुख करते हैं भारत का। बिहार में जयप्रकाश नारायण को लेकर अमित शाह के बयान पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कड़ा प्रहार किया है। ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली से शमशाद काजमी।
भारत के प्रसिद्ध समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर बिहार के सिताब दियारा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कल कहा था कि जो लोग खुद को जयप्रकाश नारायण का समर्थक बताते हैं, वे सत्ता की मोह में कांग्रेस के सहयोगी बने बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस और RJD के साथ नीतीश कुमार के गठबंधन को अवसरवादी राजनीति का उदाहरण बताया था। भाजपा ने एक बार फिर महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार पर जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों से हटने का आरोप लगाया।
जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं।
अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपाइयों का जयप्रकाश नारायण से कोई लेना देना नहीं रहा है।
जेपी से कोई रिश्ता रहा है? हम लोगों का क्या रिश्ता रहा है सबको मालूम नहीं है।
महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा,
कांग्रेस ने जो कुछ किया हम सबका समर्थन नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ किया आप ठीक, मैंने हमने आपको कहा कि किस तरह से मैंने संपत्तियां बनाई, बैंकों का राष्ट्रीय का सब, आप उसके उल्टा दिशा में जा रहे हैं।
ज्ञात रहे कि अब से कुछ महीने पहले जनता दल यू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़कर महागठबंधन का फिर से दामन थाम लिया था। पहले जनता दल यू और भाजपा की गठबंधन सरकार और अब महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में जनता दल यू ने NDA से नाता तोड़ लिया था। तब पटना की हुंकार रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यदि आपके पास जेपी हैं तो मेरे पास BJP है। टीकाकारों का कहना है कि अब भाजपा में काफी परिवर्तन आया है और उसने जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज समाजवादी नेताओं को भी याद करना शुरू किया है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने राजनीतिक चर्चा सुनी और अब हम पेश करने जा रहे हैं एकता सप्ताह के संबंध में विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, कार्यक्रम एकता सप्ताह के मौके पर पेश किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, शिया और सुन्नी दोनों मत इस बात पर सहमत हैं कि दुनिया जब अपने अंत पर पहुंच जाएगी तब पैगंबर इस्लाम के वंशज से अंतिम ईश्वरीय दूत आएगा जो अत्याचार और अन्याय से भरी दुनिया को न्याय से भर देगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ज्ञान, बुद्धि व अनुभव ईश्वर की बड़ी अनुकंपाएं हैं और ये बहुत सी समस्याओं का समाधान करती हैं, लेकिन अब तक यही सिद्ध हुआ है कि ये चीज़ें अन्याय की बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर सकती और मनुष्य की इस सर्वकालिक अभिलाषा के पूरा होने में ईश्वर की सहायता की जरूरत है और यही कारण है कि मानवता को एक ऐसे मुक्तिदाता की जरूरत है जो जुल्म से भरी इस दुनिया को न्याय से भर दे। इस्लाम के सूर्य को उदय हुए 1400 साल से ज्यादा का समय बीत रहा है। इस दौरान इस्लामी विभिन्न धर्मों और इस्लाम के अनुयायियों के बीच मतभेद रहे हैं। कभी अलग अलग समय और क्षेत्रों में इन मतभेदों में अधिक तीव्रता देखने को मिलती है तो कभी और मतभेदों को रंग फीका पड़ जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी मुसलमानों ने एकता के आधार पर इस्लाम और पवित्र कुरान के मार्गदर्शन के अनुसार काम किया है तो उन्होंने शांति और भाईचारे के साथ अधिक प्रगति की है और शक्तिशाली रहे हैं। वहीं जब जब इस्लाम के मानने वालों के बीच मतभेद, कलह, झगड़े और अतार्किक बहसें हुई हैं तब तब उनकी ताकत कम हुई है और उसने दूसरों को उन पर हावी होने का आधार प्रदान किया है।
पवित्र कुरान में ईश्वर मोमिनों से उस पर भरोसा रखने और दुश्मनों के सामने दृढ़ता के साथ डटे रहने पर बल देते हुए सूरह अनफाल की 46वीं आयत में कहता है कि और अल्लाह और उसके पैगंबर का आज्ञा पालन करो और आपस में झगड़ा न करो ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم نربل ہو جاؤ اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے۔ اپنے پریاس کو جاری رکھو، صبر اور دھیرے سے کام لو، کیونکہ نسندے اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس ایشوریہ آدیش پر انوپالن کرنا کسی بھی سمے سے اس وقت کہیں ادھک آوشک ہے، کیونکہ ویشوک اپنیویش وادی اور ورچسو وادی پوری گمبھیرتا سے اور کئی اپکرنوں کے مادھیم سے، وشیش روپ سے اسلام دشمن میڈیا دشپرچار کے ذریعے مسلم دنیا میں وبھاجن کو بھڑکا رہا ہے اور مسلمانوں کی گریما طاقت اور دھارمک مولیوں کو نشٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اس تتھی کے باوجود ہے کہ اسلام کے انویائیوں کے بیچ کچھ متبیدوں کے باوجود کئی مہتوپورن اور سامانیہ آدھار ہیں جن پر وہ ٹھوس ایکتا اور ایک جٹتا پراپت کر سکتے ہیں۔ ان سامانیہ کارکوں میں ہم ایک ہی ایشور پیغمبر اسلام اور پوتر قرآن کے ساتھ ساتھ مانو جاتی کے ادھار کرتا ارتھات انتم مکتی داتا میں وشواس کا الیکھ کر سکتے ہیں، جو سبھی اسلامی دھرموں کے بیچ عام سہمتی کا وشے ہے۔
پویتر قرآن میں اسپشٹ روپ سے اسلام کے پرسار اور پورے سنسار پر سچوں کے شاسن کا الیکھ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام اور ان کے پریجنوں دوارا ڈھیروں روایتیں آئی ہیں کہ دنیا کے انت میں ادھار کرتا کے روپ میں حضرت مہدی انتم مکتی داتا کے روپ میں پرکٹ ہوں گے، جو پوری دنیا کو ظلم کو سماپت کر کے نیائے پر آدھاری شاسن کی استھاپنا کریں گے۔ حضرت مہدی کے ظہور کے سمبندھ میں پیغمبر اسلام دوارا بیان کی گئی بہت ساری حدیثوں میں سے ایک میں انہوں نے سنسار کے انتم مکتی داتا کی وشیشتا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میرے پریوار کا ایک سدسیہ دنیا کے انت سے پہلے سامنے آئے گا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کا ویوہار بھی میرے جیسا ہوگا، وہ پوری دنیا کو نیائے اور شانتی سے بھر دے گا۔
سنی مسلمانوں کی پرسدھ ہستیوں میں سے ایک احمد بن حنبل بھی اس حدیث کو پیغمبر اسلام سے اس طرح روایت کیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یدی سنسار کے وجود کا کیول ایک ہی دن شیش رہے گا تو اس دن اللہ ہمارے پریوار میں سے کسی ایک سدسیہ کو اوشیہ سامنے لائے گا اور وہ دنیا کو نیائے اور شانتی سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے اس سمے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ اس لیے پوتر قرآن کی شکشا اور پیغمبر اسلام کی حدیثوں کے آدھار پر سبھی مسلمان اپنی ایکتا اور سہانبھوتی کے کیندر کے روپ میں ایشور کے انتم مکتی داتا حضرت مہدی کو چن سکتے ہیں۔ اس وشے کے سمبندھ میں جو کیول انتر ہے وہ درشٹی کونوں کو لے کر۔ شیعہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ان کا جنم ہو چکا ہے اور ایشور کی اچھا سے وہ نظروں سے اوجھل ہے اور اس کی آگیا پر وہ دنیا کے سامنے پرکٹ ہوں گے، لیکن ادھکان سنی دھرم گروؤں اور ودوانوں کا ماننا ہے کہ سنسار کے انتم مکتی داتا حضرت مہدی کا ابھی تک جنم نہیں ہوا ہے۔
ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں مت دنیا کے انت کے سمے پیغمبر اسلام کے ونشج سے ایک سدسیہ کے پرکٹ ہونے اور اس کے دوارا پوری دنیا میں نیائپورن اسلامی سرکار کی استھاپنا پر سہمت ہیں۔ یہی درشٹی کون دونوں متوں کے بیچ ایکتا اور ایک جٹتا کا سوتر دھار بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت مہدی کے پرکٹ ہونے کے وشے پر ایکتا کے ذریعے کیا لابھ اور اپلبدھیاں پراپت کی جا سکتی ہیں؟ تو اس پرشن کا پہلا اتر یہ ہے کہ وہ سبھی مسلمانوں اور یہاں تک کہ ایسے سبھی انسانوں کے لیے بھی امید کی کرن ہیں کہ جو اتپیرن کا شکار ہیں۔ اس لیے جو ویکتی سنسار کے انتم مکتی داتا کے پرکٹ ہونے اور اس کے دوارا اتیاچاریوں کے خلاف آرم کیے جانے والے ویشوک آندولن میں وشواس رکھتا ہے، وہ اسلامی دنیا کی ورتمان اراجک استھتی اور سامراجیہوادی شکتیوں اور نرنکش اور آشرت سرکاروں کے آکرمن اور ورچسو سے نراش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نظر بھوشیہ پر ہوگی۔ جیسا پویتر قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت سنکھیا 105 میں اس وشے کی اور اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء کی 105ویں آیت میں آیا ہے کہ اور ہم نے توریت کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا تھا کہ اتہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اس کے آدھار پر حضرت مہدی دھرتی پر موجود سبھی نیک اور سچے لوگوں کا نیتوتو کریں گے اور جو ورتمان استھتی میں سدھار کی آشا رکھتے ہیں وہ ان کی اپستھتی کی پرتیکشا کر رہے ہیں۔
شیعہ مسلمانوں کے وشواس کے انوسار حضرت مہدی نظروں سے اوجھل ہوئے شتابدیوں کا سمے بیت رہا ہے اور لوگ اپنے دلوں میں ان کے آنے کی آشا کا دیپ جلائے ان کی پرتیکشا میں ادیش پورن جیون بتا رہے ہیں۔ وہیں پورے مانو اتہاس میں انتم مہامکتی داتا کے آنے کا وشے موجود تھا۔ اس شبھ سوچنا کی اور بڑے و مہان ایشوریہ پیغمبروں نے ویاپک ستر پر سنکیت کیا ہے۔ سدھانتک روپ سے انتم موکش داتا کے پرکٹ ہونے کا وشواس رکھنا وہ وشے ہے جسے یہودی، پارسی، عیسائی اور وشیش کر ایشوریہ دھرم اسلام میں ایک مول سدھانت کے روپ میں مانا گیا ہے۔ پویتر قرآن کی کچھ آیتوں میں سپشٹ روپ سے کہا گیا ہے کہ اس بات کی شبھ سوچنا پورو کے پیغمبروں کی کتابوں میں بھی دی گئی ہے۔ پارسیوں کی دھارمک پستک زند میں بھی انیائے و اتیاچار کے سماپت ہونے تتھا بھلے بندوں کے زمین کا اتراادھیکاری ہونے کی اور سنکیت کیا گیا ہے۔ اسی پرکار یہ کتاب اچھائی اور برائی کے بیچ سدیو لڑائی جاری رہنے کی اور سنکیت کرتی اور بل دے کر کہتی ہے کہ ادنڈی و اتیاچاری لوگوں کے گٹ سماپت ہونے کے بعد سنسار اپنے مول کلیان و سفلتا تک پہنچ جائے گا اور آدم کی سنتان بھلائی کے سنہاسن پر بیٹھ جائے گی۔
اسی طرح ہندو دھرم کی پستکوں میں بھی مکتی دلانے والے کا اُلیکھ ملتا ہے۔ مہابھارت میں آیا ہے، سمست دھرموں کا ماننا ہے کہ اتہاس کے ہر کالکھنڈ کی سماپتی پر منشیہ کا آدھیاتمک ایوم نیتک درشٹی سے پتن ہو جائے گا، اور چونکہ سوابھاوک روپ سے اس کا پتن ہو رہا ہے تتھا وہ برہمان کی رچنا کرنے والے سے دور ہو رہا ہے، اس لیے وہ سوئم اس پتن کو نہیں روک سکتا۔ تو انتتہ ایک دن آدھیاتمک درشٹی سے ایک ایسا مہان ویکتی پرکٹ ہوگا جس کا سرشتی کے رچیتا سے سمپرک ہوگا اور سنسار کو اگیانتا، اچیتنا اور انیائے کے اندھکار سے مکتی دلائے گا۔ یہودی دھرم کے لوگ بھی، جو سوئم کو ایشوریہ دوت حضرت موسیٰ کا انویائی سمجھتے ہیں، مکتی داتا کی پرتیکشا میں ہیں۔ یہودی دھرم کی دھارمک رچناؤں، توریت اور ان کے دوسرے پیغمبروں کی کتابوں میں مکتی داتا کے آنے کی اور بارمبار سنکیت کیا گیا ہے۔
دوستو، انتظار سوئم ایک مولیوان عبادت ہے۔ اس بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کا سب سے اچھا کام امام مہدی کے پرکٹ ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ اسلام دھرم کی درشٹی سے یہ انتظار رچناتمک اور واستوک ہونی چاہیے، جس کا ارتھ ہے کہ انتظار کرنے والے ویکتی یا سماج کا کاریہ جس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے دوارا آرم کیے جانے والے آندولن کے مولیوں اور لکشوں کے انوروپ ہو۔ اسی طرح یہ وشے ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے بیچ ایکتا اور ایکجٹتا کی مضبوط کڑی بن سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے بیچ ایکتا اور ایکجٹتا پیدا کر کے اور اصلی دشمنوں کے چہرے سے نقاب ہٹا کر مسلم ودوان اور دھرم گرو مہتوپورن بھومیکا نبھا سکتے ہیں۔ ان کی یہ بھومیکا بہت اہم ایوم نرنائک ہے، کیونکہ اس سے مسلم امت کا بھوشیہ روشن اور سفل ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا انوسرن کرتے ہوئے دھرم گرو بہترین سماج سدھارک اور ایکتا کے دھوج واہک بن سکتے ہیں۔
اسی کے ساتھ کاریکرم کا سمے سماپت ہوا، اب ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ایکتا سپتاہ کے بارے میں آپ نے وشیش کارکرم سنا۔ کارکرم آپ کو کیسا لگا، اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور اب سبھا کے انت میں پیش ہے ساپتاہک کارکرم آج کل۔
آج کل
دوستوں، کارکرم آج کل کو لے کر اپستھت ہیں سواتی اور سید میں۔ سام کا سلام سویکار کیجیے۔ آج ہم سینی کیڈیٹوں کے سناتک سماروہ میں ایران کے اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا اور سپریم کمانڈر ان چیف आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी के भाषण की समीक्षा करेंगे।
ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कमांडर इन चीफ आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी ने 3 अक्टूबर को सैन्य कैडेटों के स्नातक समारोह को संबोधित करते हुए सबसे पहले कई हजार कैडेटों के सशस्त्र बलों से जुड़ने को एक अच्छा शगुन बताया और कहा कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो हर साल दोहराई जाती है। इससे देश के सुरक्षा बलों को एक नई ऊर्जा मिलती है। इन जवानों के सेना में प्रवेश से पुनर्निर्माण और मजबूती का संदेश जाता है। ये ऊर्जा जहां कहीं और जिस विभाग में भी पहुंचेगी अपने साथ पुनर्निर्माण और मजबूती को लेकर जाएगी।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने देश में विरोध प्रदर्शनों के बहाने अशांति और दंगे फैलाने वाले के संदर्भ में कहा, आज दुष्प्रचार का एक अभियान चल रहा है जिसमें वास्तविकता के विपरीत चीजों को उलट पलट कर पेश किया जा रहा है। इस अभियान के जरिए यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ईरानी युवा मूल्यों से कट गए हैं और भविष्य को लेकर निराश हैं। वे जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे हैं। इसका काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, हालांकि यह वास्तविकता के एकदम उलट है। हमारी नई नस्ल हर क्षेत्र में और हर मैदान में प्रगति कर रही है। भविष्य में भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
आयतुल्लाह खामेनेई ने सशस्त्र बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा का स्तंभ करार दिया और इस स्तंभ को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा, अमेरिका जैसे धमकाने वाले दुश्मनों का सामना करने वाले हमारे देश के लिए सशस्त्र बलों का सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है।
नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो नए ज्ञान और प्रौद्योगिकी का निर्माण करती है और इसे ऐसे उत्पादों और सेवाओं में बदल देती है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में किया जा सकता है। नवाचार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक रक्षा क्षेत्र है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के पड़ोस के वातावरण की जटिलता और इस माहौल में विभिन्न खतरों के कारण युद्ध में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए सशस्त्र बलों में नवाचार की आवश्यकता है।
वरिष्ठ नेता आगे कहते हैं, सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने के लिए नए और अप टू डेट समाधान करने चाहिए जिसमें प्रशिक्षण और सैन्य उपकरणों की भूमिका अहम है और ईश्वर की कृपा से ये प्रक्रिया हमारे सशस्त्र बलों में शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आज सैन्य उपकरणों, हथियारों और यहाँ तक कि गोला बारूद समेत सशस्त्र बलों को अप टू डेट करना और उन्हें स्मार्ट बनाना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। इसके अलावा अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रगति सशस्त्र बलों को मजबूती प्रदान करती है। आज दुनिया में जितने भी युद्ध लड़े जा रहे हैं वो जटिल और मिश्रित हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज किसी भी राष्ट्र के खिलाफ जब युद्ध का मोर्चा खोला जाता है तो लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाती है, जैसे कि सीधे युद्ध, प्रॉक्सी वार, सॉफ्ट युद्ध, बौद्धिक युद्ध, सांस्कृतिक युद्ध और विभिन्न प्रकार के हथियारों से युद्ध। युद्ध अभ्यास के दौरान युद्ध के इन सभी रूपों से मुकाबले का अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
वरिष्ठ नेता ने सशस्त्र बलों को देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने का जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि उन्हें कमजोर करने का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना है। किसी भी समाज के लिए शांति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। व्यक्तिगत मामलों में से लेकर सामाजिक स्तर और विदेशी मामलों तक शांति और सुरक्षा एक बुनियादी ढांचा है। वरिष्ठ नेता का कहना है कि इस क्षेत्र में हमारे देश को एक विशिष्टता प्राप्त है क्योंकि हमारे देश में शांति और सुरक्षा आंतरिक आधार हैं। एक ऐसा देश और राष्ट्र की जिसकी सुरक्षा का आधार उसके सुरक्षा बल, उसकी अपनी शक्ति और अपनी योजनाएं होती हैं, वह अपने लिए सुरक्षा का प्रबंधन कर सकता है। लेकिन अगर किसी देश की सुरक्षा का आधार बाहरी शक्तियां या कारक है तो वह अपनी सुरक्षा में दूसरों पर निर्भर होता है। ईरान में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के कांधों पर है। ईरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना है कि ईश्वर की कृपा और इमाम जमाना की मदद से हमारी शक्ति हमारे लोग, सुरक्षा बल और सैन्य अधिकारी हैं। हमने इसी के सहारे राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना की है और हम इसे सुरक्षित रखने में भी सक्षम हैं। जो लोग या देश विदेशी ताकतों पर निर्भर हैं, एक दिन वही विदेशी ताकतें उन्हें झटका दे देती हैं, क्योंकि समय के साथ साथ हितों और जरूरतों में बदलाव होता रहता है।
वरिष्ठ नेता ने अपने भाषण के एक भाग में ईरान में घटने वाली हालिया घटनाओं पर बात की और उन्होंने इन घटनाक्रमों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कुर्द लड़की महसा अमीनी की मौत पर दुख जताया और इस बहाने सड़कों पर उपद्रव फैलाने को असामान्य बताया। उन्होंने कहा, हालिया घटनाक्रमों के दौरान सबसे ज्यादा देश के सुरक्षा बलों पर जुल्म हुआ है, स्वयंसेवी बल बसीज पर जुल्म हुआ, ईरानी राष्ट्र पर जुल्म हुआ, उन्होंने जुल्म किया। हालांकि अन्य घटनाक्रमों की तरह इस घटनाक्रम में भी राष्ट्र शक्तिशाली होकर उभरा। हमेशा की तरह, अतीत की तरह भविष्य में भी ऐसा ही होगा। भविष्य में जब भी दुश्मन अशांति पैदा करना चाहेगा, ईरान की बहादुर और वफादार जनता सीना तान कर खड़ी हो जाएगी। लोग मैदान में कूद पड़ते हैं और मैदान में कूद पड़े। हाँ, ईरानी राष्ट्र पीड़ित है, लेकिन वह मजबूत है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की तरह जो सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन इसके बावजूद सबसे अधिक पीड़ित थे।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना था कि कुछ लोग हालिया घटनाक्रमों में विदेशियों की भूमिका को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति इन घटनाक्रमों के पीछे विदेशी ताकतों के हाथ को देख सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अमेरिका, अवैध ज़ायोनी शासन और उनके पिट्ठुओं ने इसकी योजना तैयार की है। उनके कारिंदे, भाड़े के लोग और विदेशों में रहने वाले कुछ देशद्रोही ईरानी उनकी मदद कर रहे हैं।
उन्होंने ये सवाल भी किया कि इससे यह विदेशी सरकारें क्या हासिल करना चाहती है। इस संदर्भ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर संकेत करते हुए कहा, दरअसल उन्हें एहसास है कि देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, शक्तिशाली बन रहा है। वे इसे सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि वे ये होते हुए नहीं देख सकते कि कुछ पुरानी गांठें खुल रही हैं। हालांकि देश में बहुत सी समस्याएं भी हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए वर्षों पहले से काम हो रहा है, इन समस्याओं का समाधान निकल रहा है। विदेशी सरकारें ईरान को प्रगति करते हुए देख रही हैं, उन्हें पता है कि ईरान तेजी से विकास के मार्ग पर अग्रसर है, यह एक सच्चाई है। वे नहीं चाहते कि ईरान प्रगति करे।
आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामेनेई ने प्रतिबंधों को निष्क्रिय बनाने के लिए उत्पादन क्षेत्र और नॉलेज बेस्ड कंपनियों की सक्रियता के बारे में कहा, वे देख रहे हैं कि बंद पड़े कारखाने खुलने लगे हैं, नॉलेज बेस्ड कंपनियां सक्रिय हो गई हैं, वे देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ता जा रहा है जिससे प्रतिबंधों की धार कुंद हो रही है। जो इस समय दुश्मन का एकमात्र हथियार है वो बेअसर हो रहा है। इस प्रगति और आंदोलन को रोकने के लिए उन्होंने योजना बनाई है। उन्होंने विश्वविद्यालयों के लिए योजना तैयार की है, उन्होंने सड़कों के लिए योजना तैयार की है। दुश्मन ने योजना बनाई है कि विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया जाए, युवा पीढ़ी को इसमें लगा दिया जाए, देश के अधिकारियों के लिए नई समस्याएं पैदा की जा रही हैं।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना था कि दुश्मनों की योजनाओं और साजिशों से उनकी नियत का पता चलता है। ये वही दुश्मन है जो एक और कूटनीति की बात करता है और कहता है कि हम ईरान पर हमला करने और व्यवस्था में बदलाव करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरी ओर वह दंगे भड़काने और देश की शांति को भंग करने के लिए साजिशें रचता है और लोगों को इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ उकसाता है।
वरिष्ठ नेता कहते हैं कि वे सिर्फ इस्लामी गणतंत्र के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ईरान के खिलाफ हैं। अमेरिका शक्तिशाली ईरान का विरोधी है, वो स्वाधीन ईरान का विरोधी है। उनका सारा विरोध और झगड़ा इस्लामी गणतंत्र को लेकर नहीं है। हाँ, इस्लामी गणतंत्र का कट्टर दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस्लामी गणतंत्र के बिना भी ऐसे ईरान का विरोधी है जो शक्तिशाली हो, ऐसा ईरान जो स्वतंत्र हो। वे पहलवी शासन वाले ईरान को पसंद करते हैं, दूध देने वाली गाय और जो उनके आदेशों का पालन करने वाला हो। देश का राजा कोई फैसला लेने के लिए ब्रिटिश या अमरीकी राजदूत को बुलाकर उससे सलाह लेने के लिए मजबूर हो। इस कलंक को ईरानी जनता कैसे सहन कर सकती है? वे यही चाहते हैं, वे ईरान के विरोधी हैं।
तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है और दोस्तों, सभा के समापन से पूर्व मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर। वरिष्ठ नेता ने कड़े प्रतिरोध को शत्रु से मुकाबले का एकमात्र मार्ग बताया। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने कड़ी चेतावनी दी है। रूस का कहना है कि यूक्रेन संकट के समाधान में अमरीका बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। शेख जगजकी कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के एजेंट के रूप में सऊदी अरब इस समय काम कर रहा है। हम आशा करते हैं कि हमारे प्रयास आपको पसंद आए होंगे। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत करवाते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़।